Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kaivalya Upanishad, presented by Swami Sri Pratyak Bodhanandaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Tattvavitta Mahatmaka, jo pratitiks and sukshma sharir hai, uska bhi lay ho jata hai, apne ghatakon mein, mul tattva mein, और कुछ भी रहता नहीं है जिसकी बाद में गति हो. ब्रह्म सन ब्रह्म अप्येति. इसलिए महात्मा का जब शरीर छूटता है वो ब्रह्म को जानने वाला है, उसलिए उत्सव माना जाता है. क्यों? परांत काल. और हम लोग का क्या होगा? श्राद्ध करना पड़ेगा. क्यों? गए आगे गए. वी आर ट्रैवलर. हम लोग तो यात्री है. शरीर छूटने के बाद ज्यादा यात्रा करते हैं, यहां से वहां जाएंगे. अपरांत काल है संसारी नाम. ये मरण काल ते अपरांतान तान अपेक्ष मुमुक्षुणाम संसार अवसाने देह परित्याग काल है परांत काल है. संसारियों का शरीर छूटता है. सूक्ष्म शरीर है, अविद्या है, दूसरा शरीर ग्रहण करते हैं. मृत्युस्त मृत्युम आपनोति पुनरपि जननम पुरनपि मरणम यथा कर्म यथा श्रुतम. बहुत है. आप लोग को कभी समय मिले तो बृहदारण्यक उपनिषद में देखना. जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे प्रविष्ट करता है और कैसे इस शरीर से धीरे धीरे वो निकलता है, उस समय क्या क्या होता है, उसका बहुत विशद वर्णन है. और पूर्व प्रज्ञा जो पहले की है वो दूसरे शरीर में जाने पर भी रहती है. और ऊर्ध्वाधर लोक में कैसे जाता है, सबका वर्णन है. तो संसारी जो है, संसारी माने जिसको ये वेदांत जनित बोध प्राप्त नहीं हुआ है, वो अपने कर्म को भोगने के लिए फिर जन्म ग्रहण करते हैं, मरते हैं, फिर पैदा होते हैं. तत्ववेत्ता जो है उसके लिए परांत काल है. अंतिम बार शरीर छूट गया, प्रारब्ध के अंत होने पर सूक्ष्म शरीर तो दग्ध है श्री कृष्ण के रथ के समान. अविद्या पहले से नष्ट है, इसलिए इसको कहते परांत काल. अब महाराज उसका जो आत्मा है वो कहीं जाता है कि नहीं जा सकता है? क्यों? जो व्यापक है उसमें गमन आगमन नहीं है, और जिसमें गमन आगमन होता है वो परिच्छिन्न होता है, टुकड़ा होता है. मैं और आप ये हॉल में आकर जा सकते हैं, पर इस हॉल का आकाश बाहर अंदर आ सकता है? क्यों? व्यापक है. इसलिए कहते हैं ब्रह्मलोक है. वो ब्रह्मलोक क्या है? तो ब्रह्मलोके कहा है बहुवचन में कि बहुत से साधक है जो इस ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, इसलिए ब्रह्मलोकेशु बहुवचन में कहा. एक अपि अनेकवत् दृश्यते प्राप्यते वा. एक होने पर भी अनेक की जैसा दिखता है. इन्होंने ब्रह्म को प्राप्त किया, इन्होंने प्राप्त किया, इन्होंने प्राप्त किया, इस प्रकार से. ब्रह्मलोकेषु इति ब्रह्मणि इत्यर्थः. अभी यहां ब्रह्मैव ब्रह्म. अब आप देखिए यहां ब्रह्मलोक है. अपने को मैं जो मानता हूं उसी लोक में मैं हूं. मैं अपने को देह मानता हूं तो कौन से लोक में हूं? मनुष्य लोक में हूं, है ना? ये मनुष्य है, मनुष्य लोक में हूं. ये जहां अपने को ब्रह्म के रूप में पहचानता है तो वो अपने को देह मानता है कि ब्रह्म रूप जानता है, ब्रह्म रूप जानता है, इसलिए ब्रह्म लोक. और ब्रह्म एवं लोक है, ब्रह्म ही लोक है, इसलिए ब्रह्म व्यापक है और मैं वो ब्रह्म हूं. इसलिए शरीर छूट गया, अब इसकी गति नहीं है. परामृता. परम अमृतम अमरण धर्मकम ब्रह्मात्म भूतम येषां ते परामृता जीवंत एव ब्रह्म भूता परामृता परम अमृत की प्राप्ति हो गई है। जीते जी शरीर में रहते हुए भी अपने को जानता है कि मैं जन्म मृत्यु से सदा मुक्त हूं। अब क्या हो गया, यहां आपके मंत्र में कैवल्य में परामृतात् कहा है, यहां परामृता लिखा है, अब उसका भी अर्थ लग जाता है। वो परामृतात् अमृत शब्द का अर्थ वहां किया जो कभी नाश जिसका नहीं होता है। आप देखिए हम जागृत से सुषुप्ति बीजात्मक अवस्था में पहुंचते हैं, फिर वहां से वापिस आते हैं, जाते हैं वापिस आते हैं। ये जो बीज रूपी अविद्या है, बीज रूपी जो सुषुप्ति है, उसका कभी नाश होता है? एक बीज में कोटि कोटि वृक्ष पैदा करने की शक्ति होती है, वो अमृत है। ऐसे जगत का जो मूल है सबको मिला के जिसमें लय प्रलय होता है, वो जो कारण अवस्था है बीजावस्था है, उसमें कोटि कोटि ब्रह्मांड पैदा करने की शक्ति है, उसको कहते हैं अमृत। और गीता में अक्षर है ना, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते, यही है माया। ये सर्व जगत कारण जो है माया, उसमें कोटि कोटि ब्रह्मांड पैदा करने की शक्ति है। तो ये तत्ववेत्ता ये क्षय रूपी मृत रूपी शरीर से छूट गए, और जो माया है अव्याकृत है, अव्याकृत माने जो डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, अव्यक्त है, माया है, उससे भी मुक्त हो जाए। परामृतात् परिमुच्यन्ति माने क्षर अक्षर दोनों से मुक्त हो गए, छूट गए, अथवा पर अमृत स्वरूप आत्मा को प्राप्त करते हैं। परिमुच्यन्ति सर्वे परिसमंतात् प्रदीप निर्वाणवत घट आकाशवच्च निवृत्तिम उपयान्ति। बहुत सरल दृष्टांत है, घड़े को फोड़ने पर घड़े का आकाश बाहर के आकाश में मिल जाता है, मिल जाता है, हाँ मिल जाता है, तो गड़बड़ है, फिर मिला हुआ ही है, मिला हुआ भी कहाँ है, एक ही आकाश है। क्या घड़े बनने से आकाश को काटपुट दिया हमने? आकाश वो है इनडिविजिबल, जिसमें कभी भी कोई किसी प्रकार का परिच्छेद काटना टुकड़ा नहीं कर सकता है, वही अखंड आकाश। इसी प्रकार अपना अपना आत्मा भी अखंड है, इसलिए लगता ऐसा है कि घटाकाश महाकाश में मिल गया। दूसरा दृष्टांत देते हैं, प्रदीप निर्वाण वस, दीपक जल रहा था, दीप शिखा दिख रही थी, दीप ज्योति, पर जब वो शांत हो गया तो क्या अग्नि का नाश हुआ? पहले व्यक्त था, अभी क्या हो गया, अव्यक्त है। पहले महात्मा इस शरीर के द्वारा क्या व्यक्त था, अब क्या है, है पर अव्यक्त है, उसका नाश नहीं हो सकता है। अभी महाभारत से एक बढ़िया दृष्टांत देते हैं समझाने के लिए। शकुनी नाम इव आकाशे जले वारी चरस्य च पदम यथा न दृश्येत तथा ज्ञानवतां गति। ज्ञानियों की गति कैसे है, तो कहा कि आकाश में ये पक्षी गति करते हैं, तो आप उसका पद चिन्ह देखते हैं कि इस मार्ग से आकाश में गए, देयर इज नो ट्रेल। आपको मालूम है धुएं का संस्कृत में नाम क्या है, कृष्ण वर्तमा, जो काला अपने पीछे रास्ता वो पथ छोड़ के जाता है। ये प्लेन भी जाकर मालूम पड़ता है इसका स्टिप से कि यहां से गया है। धुआं अपने पीछे अग्नि भी क्या छोड़ जाता है, कृष्ण वर्तमा का है अग्नि भी, उसके पीछे वो धुआं और काला काला ट्रेल छोड़ जाता है, महात्मा का ऐसा होता नहीं है। पक्षी की तरह, पक्षी किस बात से गया किसी को वो रास्ता दिखता नहीं है। अगर एक अणु समझ में ना आया तो दूसरा भी देते हैं महाभारत में, जले वारी चरस्य च, मछली पानी में चलती है तो किस रास्ते से गई मालूम पड़ता है, वो भी पद चिन्ह पीछे छोड़ती नहीं है। इसी प्रकार से महात्मा का शरीर छूटा और वो पूर्ण हो गया, वो कहीं गया नहीं है क्योंकि हमको देख सके, तो कैसे पूर्ण हो गया ये हमको दिखता नहीं है, ये पूर्ण है पूर्ण हो गया। और उपनिषद का मंत्र दे, अनद्वगा अद्वसु पारयिष्णवः, अध्व मानी रास्ता, अद्वसु पारयिष्णवः, जो मार्ग से चल के कहीं पहुंचना चाहते थे। हम लोग सब लोग लक्ष्य लेके बैठे हैं, गोल लेके बैठे हैं, यहां पहुंचना है। देखो है ना, सुबह उठ के कहां पहुंचना है, प्रेमपुरी, फिर कहां पहुंचना है, भेलपुरी चौपाटी, है ना। तो यहां से वहां जाएंगे, वहां से घर जाएंगे, एक एक के बाद एक एक रास्ता हमारा तय होता है, वहां से कहां जाना है। मरने के बाद भी क्या, वैकुंठ है, शिव भक्त कैलाश, सबका एक एक पक्का होता है, हमको वहां जाना है। तत्ववेत्ता क्या, वो भी पहले कहीं जाना चाहता था, अब जानता है मैं व्यापक हूं, न जाना है न आना है। अनद्वगा अद्वसु पारयिष्णव, पारयिष्णव जो पार करना चाहते थे रास्ता, अद्वसु अनद्वगा, वो सब मार्ग रहित हो गए। वाह बढ़िया है। इति श्रुति स्मृतिभ्यः देश परिच्छिन्न ही गति ही संसार विषया एव। अब शंकराचार्य बराबर खबर लेते हमारी, अगर मर के कहीं जाना है इसको क्या कहते हैं, संसार ही कहते हैं, क्योंकि जाओगे और देखो जाओगे वहां शायद अच्छा भी नहीं लगेगा। ये लोग जहां आपको भेजना चाहते ना, वहां जाओगे कई चीज यहां की जो है वो नहीं मिलेगी, भेलपुरी नहीं मिलेगी पहले वक्त, फिर क्रिकेट के जो कल लंदन और ऑस्ट्रेलिया का हुआ वो देखने को नहीं मिलेगा, ये सब देखने को, तो आपके टीवी नहीं है, दूरदर्शन वहां तक नहीं पहुंचा है, दूरदर्शन जिसका नाम बहुत दूर का दर्शन है ना, वो दूरदर्शन वहां नहीं है, क्या करोगे, ये परिच्छिन्न गति नहीं है, वो तो संसार ही जाते आते रहते हैं। परिच्छिन्न साधन साध्यत्वात्, महाराज आपको उसको परिच्छिन्न क्यों कहते हो, क्योंकि उसके जो साधन है, जितने दिन आपने पैसा पैकेज प्रोग्राम में, पैकेज कहते हैं आजकल, तीन रात रही आप कहां महाबलेश्वर में इतने रुपये में, जब पैकेज पूरा होता है तो क्या होता है, आप नहीं निकलेंगे तो वो निकाल देंगे आपको वहां से, और जितना पैसा लगा है उतना दिन रह सकते हैं। साधन साध्यत्वात्, दूसरा ब्रह्म तो समस्तत्वात् न देश परिच्छेदेन गंतव्यम, जो व्यापक है, पहले तो ब्रह्म जा ही नहीं सकते, क्यों नहीं जा सकते अगर कोई कहे स्वामी जी हमको आकाश को प्राप्त करना है तो क्या करेंगे उसको उसको पुनः भेजेंगे पुनः मालूम है ना, आकाश उनका यहां है ना, आकाश यहां है ना, अंदर थोड़ा गड़बड़ है, आकाश को प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि व्यापकत्वात्, तो मैं ब्रह्म उससे भी ज्यादा व्यापक है। ब्रह्म तो समस्तत्वात् देश परिच्छिन्न गंतव्यम, यदि ही देश परिच्छिन्न ब्रह्म स्यात्। अभी देखो तर्क से कितने उसमें दोष है, जो आपको मैंने कल बताया था, होल ऑल वर्ल्ड रिलीजियंस आर टूरिज्म प्रमोशन, पूरी दुनिया के मजहब, आपको वहां जाना है वहां जाना है, और ये सब जहां भी जाओगे इसमें कितने दोष है, यह शंकराचार्य महाराज बताते हैं। आद्यंत उसका आदि होगा, उसका अंत होगा। अन्याश्रितम, अगर मैं महाबलेश्वर जाता हूं तो किसका आश्रय लेना पड़ेगा, मेरे से पृथक किसी का आश्रय लेना पड़ेगा। और सावयवत्वम होगा, जैसे मैं हूं हाथ पांव वाला, ऐसा वो भी है, उसका भी कोई अवयव है, और जिसका अवयव होता है वो अनित्य होता है। ये माला में कई चीज जुड़ी हुई है फूलों की, ये माला कल नहीं रहेगी, अनित्य। ये टेबल भी क्या है, कई चीजों को जोड़ के बनाया है, ये भी अनित्य है। ये शरीर भी क्या है, कई चीजों को जोड़ के बनाया है, भानुमति की पुड़िया ये भी टूट जाएगी। तो अनित्यम कृतकम च, यह कृतकम तद अनित्यम। भगवान शंकराचार्य एक दो शब्द में सब कुछ कहते थे, न तु एवं विदम ब्रह्म भवितुम अर्हति, ब्रह्म ऐसा नहीं है, अतः तत्प्राप्तिश्च नैव देश परिचिन्ना भवितुम युक्ता। ये कोई देश में जितने लोगों ने कहा है ये इस लोक में जाओगे वो लोक में जाओगे, वो लोग आपको कौन सा रास्ता दिखा रहे हैं? मैंने बताया था दो दिन पहले, स्टेशन पे जाते तो वहां लोग खड़े थे, पुना पुना पुना, नासिक नासिक नासिक, है ना, ऐसे है ना, गाड़ी वाले कहते हैं ऐसे लोग वैकुंठ 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 ऐसे ही खड़े रहते हैं, चलो चलो बैठ जाओ बैठ जाओ, इस जाके वापिस आओगे। तो अपिच अविद्यादि संसार बंध अपयनमेव मोक्षमिच्छन्ति ब्रह्मविदः न तु कार्यभूतम्। ये ब्रह्मवेत्ता अविद्या की निवृत्ति मात्र से जो नित्य प्राप्त पूर्णत्व है इसी की इच्छा करते हैं। ये जो कर्म से साध्य स्वर्ग है, उपनिषद वेदों में वर्णन है, स्वर्ग कामो यजेत, तो वहां स्वर्ग काम न करने वाला यजन करे, ज्योतिष्टो में न यजेत, वो ठीक है, पर ये भी कहता है तत् यथा इह कर्मचितो लोक क्षीयते एवमेव अमूत्र पुण्यचितो अपि लोक क्षीयते। जैसे इस लोक का भी नाश हो जाता है उसका भी नाश हो जाता है। इतना कहके अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। कल बहुत बढ़िया प्रोग्राम आज और कल है हमारे शरणानंद जी महाराज, इसके लिए देखो बहुत दूर से आए, एक दो दिन के लिए उनका भी कुछ सुनेंगे और भी कुछ सुनेंगे। मैं महाराज जी को प्रार्थना करूंगा आपका उपदेश आज हो।
हरि नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामत। सद्गुरुं सद्गुणाधारं ध्यानगम्यं निरञ्जनं अखण्डानन्दपादं मयि भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। परमादरणीय प्रातस्मरणीय अनंतश्री समलंकृत श्री प्रेमप्रिय जी महाराज के एवं श्री महाराज श्री के श्री युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में कोटिशः वंदन। परमादरणीय पूज्य स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में वंदन। ब्रह्म विद्या श्रवण में संलग्न भक्तवृंद एवं मातृशक्ति, आप सभी भी हमारे आराध्य के ही अनेकानेक रूपों में विराजमान हैं। अपने आराध्य की ही अनेकानेक झांकी देख करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं कोटिशः वंदन करता हूं। अभी हम सब बहुत मधुर व्याख्या श्रवण कर रहे थे। इस विद्या के बाद कुछ कहना सुनना शेष रहता नहीं है, इसको जानने के बाद कुछ जानना शेष न रहे, इसको सुनने के बाद कुछ सुनना शेष न रहे। पूज्य महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम सब मुमुक्षु तो हैं किंतु जिज्ञासु बने। और श्रीमद् भागवत महापुराण का सच रूप से देखा जाए तो जिज्ञासा से ही प्रारंभ है। प्रथम स्कंद में ही जीवस्य तत्व जिज्ञासा, मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है जिज्ञासा, किंतु कौन सी जिज्ञासा? संसार की जिज्ञासा नहीं, तत्व जिज्ञासा। और हमारे श्री सुजी महाराज ने तत्व की व्याख्या भी कर दी, बदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ज्ञानम् अद्वयम्, अद्वयम् ज्ञानम् तत्त्वम्, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। यहां जो भगवान शब्द का प्रयोग है, ये श्री विष्णु पुराण का भगवान नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण का अपना भगवान। अब कहेंगे उस भगवान में इस भगवान में क्या फर्क है? विष्णु पुराण का जो भगवान है वह सर्व ऐश्वर्य संपन्न है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसश्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणं भगति ऋणः। किंतु जो श्रीमद् भागवत महापुराण का भगवान है वह भागवत का अपना पारिभाषिक शब्द है। जैसे वृद्धि गुण, ये व्याकरण में उसके अपने पारिभाषिक शब्द हैं, किसका नाम वृद्धि संज्ञा है, किसका नाम गुण संज्ञा है। ऐसे अद्वय बोध के लिए ही यहां भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अद्वय बोध की जिज्ञासा हो, तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। वहां भी हम सब जिज्ञासा लेकर के, प्रे की जिज्ञासा नहीं, प्रे की जिज्ञासा तो सबको, छोटे से बच्चे को भी कुछ न कुछ जानने की जिज्ञासा है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अनेकानेक प्रश्न हैं, अनेकानेक उसकी जिज्ञासाएं हैं। उस जिज्ञासा के लिए यहां नहीं कहा गया, श्रेय की जिज्ञासा। और वह शब्द ब्रह्म के जो जानकार सद्गुरुदेव हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जिज्ञासा हमारे जीवन में, एक महात्मा ने बहुत अच्छी बात हमें कही, कहा जिज्ञासा माने क्या? तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, कहा कि एक यात्री रास्ता भटक गया, मरुस्थल में प्यास लगी, पानी के बगैर लगा कि प्राण निकल जाएंगे। वह बेचारा पानी की ओर परितः चारों तरफ खोज रहा था, अकस्मात एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में एक गिलास पानी भी है और एक करोड़ रुपया भी है। उसने कहा, तुम्हें चयन करना है, तुम एक करोड़ रुपया ले लो या एक गिलास पानी ले लो। यदि सच्चा पिपासु है तो एक करोड़ रुपया लेगा कि एक गिलास पानी लेगा? पानी लेगा। उसे पता है कि पानी के बगैर जिंदगानी चली जाएगी, और जिंदगानी चली जाएगी तो रुपया किस काम आएगा। वैसे ही एक तरफ हमें ज्ञान देने के लिए गुरुदेव विराजमान हो, वो तो महात्मा कहते थे कि एक तरफ गुरुदेव ज्ञान देने के लिए तैयार हो, एक तरफ आश्रम का वैभव देने के लिए तैयार हो। तो जो आश्रम का वैभव ले ले वो जिज्ञासु नहीं है, या संसार की सामग्री कुछ भी स्वीकार कर ले वह जिज्ञासु नहीं है, जो केवल तत्वबोध जानना चाहे, तत्वबोध करना चाहे। आप उसको बहुत ही सहज सरल भाषा में श्रवण कर रहे थे। श्रुति भगवती कहती है, श्रवणम तो गुरोः पूर्वम मननम तदनंतरम निदिध्यासनमित्ते तद पूर्ण बोधस्य लक्षणम। आज श्रवण तो खूब हो रहा है, हम लोग श्रवण कर रहे हैं, किंतु मनन होता है कि नहीं? मनन भी परम आवश्यक है। जितना श्रवण आवश्यक है उतना मनन भी आवश्यक है। एक महात्मा कहते थे, मन का अभिप्राय होमवर्क। आप जो गुरुजनों के चरणों में बैठकर सुनकर जाते हो, श्रुतियों को सुन रहे हो, इसका एकांत में बैठकर चिंतन है कि नहीं? मन में लाकर बार बार दोहराना है कि नहीं। पहले श्रवण हो, फिर मनन हो, और मनन के बाद निधिध्यासन। नी दि ध्यासन शब्द है, नी माने निरंतर, दि माने दीर्घ काल तक, जो धी में बुद्धि में स्थिरता है उसी का नाम निधिध्यासन है। एक बार जानकारी तो हो जाती है किंतु अभ्यास न होने के कारण वह भूल जाता है, क्योंकि जन्म जन्म का अभ्यास तो हम यही कर रखे हैं कि हम सब शरीर हैं। जन्म जन्म का अभ्यास यही है। इस अभ्यास को छुड़ाने के लिए निधिध्यासन बहुत जरूरी है। हम कई बार देखते हैं, करीब 20 साल तक यज्ञोपवीत धारण किया, संन्यास लेने के बाद यज्ञोपवीत छूट गया। अब मुझे पता है कि यज्ञोपवीत छूट गया, किंतु जब भी लघुशंका करने के लिए जाते हैं तो यज्ञोपवीत ढूंढते हैं, यज्ञोपवीत कहां है, यज्ञोपवीत कहां है, तो बाद में लगता है कहीं उतर तो नहीं गया। थोड़ी देर के बाद याद आता है वो तो संन्यास में छूट गया। तो देखिए, ऐसे ही अभ्यास हमारा गलत हो गया है। उस अभ्यास को छुड़ाने के लिए अभ्यास परम आवश्यक है। तो श्रवण हो, मनन हो, निधिध्यासन हो, और इस प्रकार से हो तो पूर्ण बोध हो। फिर हमें बोध होगा कि कहीं आना जाना है नहीं। फिर जैसे पुना पुना वाले पुकारेंगे उनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे अपने, वैसे वैकुंठ वैकुंठ कहने वाले लोगों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इसका बोध हो जाएगा और ये होगा गुरुजनों के चरणों में बैठ करके। इसलिए परम आवश्यक है कि गुरुजनों के चरणों में हम पहुंचे। अब हम लोग कल, वैसे तो आज से ही प्रारंभ कर दिया है, पूज्य महाराज जी तो कह रहे थे 3 दिन का रखेंगे, तो आज भी हो गया, कल भी हो गया, परसों हो जाएगा, 3 दिन का ये सत्संग का क्रम। वैसे तो महाराज जी जिस दिन से बोल रहे हैं उसी दिन से क्रम चालू है, क्योंकि हम लोग चाहते भी यही हैं कि जितने महर्षि के उत्सव हैं उसमें महर्षि का ही कोई अंचल। वैसे तो भारत साधु समाज में ऐसा कोई संप्रदाय नहीं, कोई साधु नहीं जो महर्षि को न मानता हो, किंतु ऐसे जो महापुरुष जिन्होंने महर्षि को जिया है, महर्षि को प्राप्त किया है, वो लोग यदि उस क्रम में रहेंगे तो हम लोगों को ज्यादा आनंद आएगा। तो महर्षि का जिस दिन से प्रवचन चालू है वो आनंद जयंती का ही एक सत्र है, और वह जब तक चलेगा तब तक सत्र चलेगा वो, किंतु 3 दिनों का महाराज जी ने कहा। वैसे तो हर साल हम लोग उसी दिन पूजन भी करते थे और उसी दिन प्रवचन आदि का भी क्रम और प्रसाद का भी क्रम रखते थे, किंतु ग्रहण के कारण कुछ परिवर्तन हुआ है, जो आश्रम में भी परिवर्तन हुआ है वहीं के आधार पर यहां पर परिवर्तन किया गया है। अभी 11 बजे से, आज ही 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक महाराष्ट्र के चरणों में हम लोग पाद पूजा करेंगे प्रेमपुरी में अपने विपुल में। उसके बाद यहां प्रसाद का क्रम है और सायंकाल का क्रम रखा है बधाई का। अनेकानंद अधिकतर लोग जानते हैं, प्रत्येक साल हम लोग मनाते हैं बड़े धूमधाम से। इस साल भी वह क्रम पूर्ववत ही है, तो सायंकाल हम लोग 5 बजे से लेकर 7 बजे तक वह महर्षि के चरणों में ही विपुल में रखे हैं। और कल का जो अपना क्रम रहेगा वो हमको भी सुनाएंगे गिरीश भाई जी, तो उसका भी हम लोग रसस्वादन करेंगे। कल संतों का प्रवचन तो कल ही रहेगा, क्योंकि महर्षि की ऐसी आज्ञा थी गोस्वामी जी की कि आज यदि सुबह प्रवचन का क्रम रखते हैं तो आज अमावस्या नहीं है। पूजन के समय अमावस्या आ जाएगी, प्रसाद के समय अमावस्या आ जाएगी, तो आज अभी अभाव है उस तिथि का, इसके लिए वो ठीक है कि कल ही रखा जाए। तो महाराज जी पूज्य स्वामी जी महाराज की सलाह से हमारे पूज्य महान जी महाराज ने, पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज ने कहा कि जो स्वामी जी कहते हैं वह उचित है, इसलिए कल प्रवचन का क्रम तो कल रखा जाएगा अमावस्या के दिन ही। सब लोग आनंद जयंती का खूब आनंद लें, क्योंकि ये तो आनंद की जयंती है। और हम तो कई बार चिंतन करते हैं, जैसे नंदोत्सव मनाते हैं तो ये कोई नहीं कहता है कि नंद के घर में लाला हुआ, अधिकतर लोग कहते नंद घर आनंद भयो। तो ये आनंद जयंती उन्हीं की आनंद जयंती है, ये आनंद की ही आनंद जयंती है। हमारे महर्षि तो साक्षात आनंद स्वरूप थे और उनकी ही आनंद जयंती हम लोग बड़े धूमधाम से मनाएंगे। अभी सूचना हमारे श्री गिरीश भाई देंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम नारायण।